लेकिन इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। तुमने देखा वो अपनी बड़ी मरी हुई बीवी से कितना प्यार कर रहा था। हम सबसे पहले सॉलिड प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उस पर वार करेंगे। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, आस्था एक पल के लिए शांत हुई और सीरियस अंदाज में बोली, आप शायद ठीक कह रहे हैं भाई, हमें उसे बिल्कुल भी नॉर्मल मौत नहीं देनी है। ये कहते हुए आस्था बड़ी ही खतरनाक लग रही थी। तब अविनाश हौसला बढ़ाते हुए बोला, तू फिक्र मत कर गोरी, तेरा भाई है ना, अभी फिलहाल हमें एक दूसरे के साथ इतने सालों के बाद खूबसूरत टाइम बिताने को मिल रहा है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तू फिक्र मत कर, इस राजवीर जिंदल को मैं तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा कि दोबारा से जन्म लेने के बारे में ये 100 बार सोचेगा। ये बोलकर अविनाश जल्दी ही आस्था को लेकर वापस मॉल की ओर जाने लगा था, क्योंकि अविनाश नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता चले कि आस्था इस वक्त मॉल में नहीं है या वो मिसिंग है। वहीं दूसरी ओर आज तो राघव का मूड बहुत ज्यादा खुश था। उसने आस्था के किडनैप होने वाली खबर अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका और उसकी माँ को भी दे दी थी। प्रियंका की माँ और प्रियंका दोनों ही खुशी से झूम उठी थी। प्रियंका ने तो वीडियो कॉल पर बेहोश आस्था को देखने की भी डिमांड कर दी थी, लेकिन फिलहाल राघव ने उसे मना करते हुए कहा, तो फिक्र मत कर, बहुत जल्द मैं तुझे उसे सीधा सीधा मिलवाऊंगा, दिखाने की क्या बात है। तब प्रियंका मुस्कुराने लगी। राघव ने प्रियंका से ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी ही फटाफट कई सारी ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करने के बाद उसके दोस्तों ने उससे कहा, पहले तू जाता है या मैं जाऊं, वैसे भी जिस तरह से तूने उस लड़की की खूबसूरती का बखान किया है, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा है। तब राघव अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लाते हुए बोला, वो लड़की अभी बेहोश पड़ी हुई है, और जब तक लड़की चीखती नहीं चिल्लाती नहीं तब तक मुझे मजा नहीं आता, और एक बार वो बस जाग जाए, और वैसे भी अभी 5-10 मिनट में उसे होश आने वाला है। ये कहते हुए राघव बड़ा ही गंदा सा लग रहा था, लेकिन फिलहाल जैसे ही 10 मिनट बाद उसे होश आया, वो अपने दोस्तों के साथ फटाफट उस कमरे में चला गया था जिस कमरे में उसने आस्था को रखा था। और जैसे ही वो उसे कमरे में गया, उसने देखा कि जिस पॉली बैग में उसने आस्था को रखा था, अब वो धीरे धीरे हिलने डुलने लगा था। अब तो राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और वो बड़ी ही गंदी लैंग्वेज में बोला, उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन तब तक बाहर बैठे हुए उसके दोस्तों को सब्र नहीं हुआ, वो सब भी राघव के आसपास आकर खड़े हो गए थे और शरारती अंदाज में बोले, देख पहले तू ही जाएगा, लेकिन कम से कम तब तक हमें आंखों से तो सेक लेने दे, उसके हुस्न के दीदार तो कर लेने दे, हमसे अब रुका नहीं जा रहा है। जैसे ही उसके दोस्तों ने ये कहा, राघव जोरों से हंसा और बोला, ठीक है तुम लोग रुक सकते हो, लेकिन उसे सबसे पहले मैं ही छूऊंगा। तब सब लोग एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हाईफाई करने लगे। तब तक आस्था जिस पॉली बैग में थी वो उठकर बैठ गई थी, और अब राघव जल्दी ही आगे बढ़ने लगा। फटाफट से उसने आस्था के पॉली बैग को कैंची की मदद से फाड़ दिया, और जैसे ही उसने आस्था की तरफ देखा, और वही आस्था यानी कि हमारी टॉप नानी माँ ने सबकी तरफ देखा, और उन्होंने जोरों से चीख मार दी थी। सभी लोग एक दूसरे को देखकर चीखने लगे कि अचानक से ये 60 से 70 साल की बूढ़ी औरत यहाँ कहाँ से आ गई। जी हाँ, जिसको उन्होंने आस्था समझकर अगवा किया था, असल में वो आस्था नहीं बल्कि नानी माँ थी। जब आस्था चेंजिंग रूम से बाहर निकली थी, तब उस वक्त नानी माँ चेंजिंग रूम में गई थी, क्योंकि राघव की आंखें उस वक्त चारों तरफ थीं कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, और नानी माँ को बिना देखे राघव ने आस्था की जगह नानी माँ को अगवा कर लिया था और सीधा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। अब तो सब लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं नानी माँ इस तरह से अनजान जगह पर इस तरह से इतने सारे लड़कों को अपने सामने देखकर चौंक गई थी। तभी एक लड़का बूढ़ी नानी माँ की ओर देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अबे गधे, तू तो कह रहा था कि तू बड़ी खूबसूरत लड़की को उठाकर लेकर आया है, ये किस बुढ़िया को तू उठाकर ले आया? अरे ये नानी माँ है यार, तू इसे कहाँ से ले आया? अब तो नानी माँ उस लड़के की बात सुनकर गुस्से से बौखलाकर बोली, अरे कलमुहे, तू है कौन और तू करना क्या चाहता था मेरे साथ? तुम सारे लोग मिलकर क्या हमारा बलात्कार करना चाहते हो? हाँ रुको, अभी बताते हैं हम तुम्हें कहाँ हैं। ये बोलकर नानी माँ चारों तरफ देखने लगी थी। तभी नानी माँ की नज़र कमरे में रखे कोने में झाड़ू पर पड़ी। नानी माँ जल्दी से उठी और झाड़ू को लेकर उसने राघव और उसके दोस्तों की धमाकेदार धुनाई करनी शुरू कर दी। वो सब लोग अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुके थे। उन सबका मूड खराब हो चुका था, क्योंकि कहाँ तो वो खूबसूरत लड़की को देखना चाहते थे, लेकिन लड़की की जगह उन्हें अब नानी माँ मिली थी। तो उस वक्त उन लोगों का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था, और ऊपर से नानी माँ ने उनकी धमाकेदार धुलाई करना शुरू कर दिया था। तो वो सब के सब कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे और दुम दबाकर वहां से भागने लगे। तब तक नानी माँ भी उन लोगों के पीछे पीछे भागने लगी, चीखते चिल्लाते हुए बोली, अरे कलमुहे, हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। याद रहे, शारदा यूं ही नहीं कहते हैं हमें, अच्छे अच्छे को सीधा कर दिया हमने, और तुम कल के आए लौंडे हमारा बलात्कार करोगे? रुको, ये कहते हुए नानी माँ उनके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगी थी। लेकिन तब तक राघव और उसके दोस्त वहां से बाहर निकल चुके थे और नानी माँ भी धीरे धीरे जैसे तैसे उनके पीछे दौड़ते भागते बाहर तक आ गई थी। और नानी माँ ने लास्ट में वो झाड़ू फेंक कर मारी और गौर से चारों तरफ देखने लगी। लेकिन नानी माँ के बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ज्यादा देर उन लोगों का पीछा कर पाती। तभी नानी माँ ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था। ये बड़ा ही अमीर लोगों का इलाका लग रहा था। नानी माँ रोड की तरफ आने लगी और सोचने लगी कि वो करें तो करें क्या। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सिंघानिया मेंशन कहाँ है और वो किस मॉल में गए थे। उस मॉल का नाम भी अजीब सा था क्योंकि इंग्लिश में मॉल का नाम था। अब तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो सड़क पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगी और मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, बस आज हमारी गोरी से हमें मिलवा दे, उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ये बोलते हुए नानी माँ की आंखें भर आती हैं। वहीं दूसरी ओर रश्मि, राधिका, रौनक और एंजल मॉल में ही थे कि अगर मॉल में आस्था की कुछ खबर मिलती है तो वो लोग अरमान और बाकी सबको इन्फॉर्म कर सकें। आहान और ध्रुव को लड़कियों के पास छोड़कर सुमित, आकाश और अरमान तीनों अबीर सिंह राठौर के बंगले पर जा पहुंचते हैं। और जैसे ही वो वहां गए, पूरा का पूरा बंगला खाली था। तो अरमान के दिमाग में शक था कि जरूर अबीर ने आस्था को कहीं और छुपा कर रखा होगा, इसीलिए वो गुस्से से चिल्लाते हुए एंट्री करता है। अबीर सिंह राठौर के नौकर को गन पॉइंट पर लेकर उसे पूछता है, अबीर कहाँ है? तब उसके नौकर ने कांपती हुई आवाज में बता दिया था, साहब जी, अबीर साहब तो दो दिन पहले ही इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। वो बड़े मालिक की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, तो इसीलिए वो उनके पास गए हैं। अब जैसे ही अरमान ने यह सुना, वो चौंक गया। और ये खबर सच है या झूठ, इसके लिए उसने अपने एक आदमी को फोन किया। उसके आदमी ने कुछ ही देर में कन्फर्मेशन दे दिया था कि अबीर सिंह राठौर इस वक्त अपने पिता के साथ दूसरे शहर में है। अब तो अरमान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि वो करें तो करें क्या,
क्योंकि वो आस्था को हर हाल में ढूंढना चाहता था कि अगर आस्था को आज खो जाती है तो अरमान सिंघानिया इस दुनिया को ही आग लगा देगा। उसके दिल में आग लगी हुई थी। दूसरी ओर, अविनाश ने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर रखी थी और वो आस्था को लेकर तेजी से सड़कों पर चल रहा था। लेकिन तभी सड़क पर चलती हुई नानी माँ को जैसे ही आस्था ने देखा, उसने अविनाश से तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, उसने देखा कि नानी माँ उसके सामने है। नानी माँ ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया था और घबरा कर बोली, मेरी बच्ची, आ गई तू? जानती है, हम तो डर गए थे कि हम यहाँ कहीं खो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, उसने हमें बचा लिया, ऐसा बोलकर नानी माँ रोने लगी। तब आस्था ने कन्फ्यूजन से पूछते हुए कहा, आखिरकार हुआ क्या है आपके साथ, प्लीज बताइए ना, और आप यहाँ कैसे आ गई? अब आस्था के सवाल करने पर नानी माँ ने कहना शुरू कर दिया था, वो हम तुम्हें क्या बताएं बेटी, आज तो हम बाल बाल बचे हैं, हम तुम्हें क्या बताएं? तुम जानती हो, हम तो मॉल में उस चेंज करने वाले कमरे में कपड़े बदल रहे थे और कपड़े बदल कर जैसे ही हम बाहर आए, किसी ने हमारा मुंह बंद कर दिया और हमें यहाँ के किसी घर में ले आए और हमारे साथ वो बदतमीजी करना चाहते थे, लेकिन हमने भी उन्हें झाड़ू से बहुत मारा। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अब हमें समझ में नहीं आया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, तो इसलिए हम बस सड़क पर खड़े खड़े यहाँ पर रो रहे थे। अब जैसे ही बिल्कुल नानी माँ ने सारी बातें क्लियर करके बताई, अब तो अविनाश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि भला इस तरह से इतने भीड़ भाड़ वाले मॉल में कौन नानी माँ पर इस तरह से हाथ डाल सकता है। तब आस्था ने नानी माँ को गले लगाते हुए कहा, नानी माँ, बस आप ठीक है, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप फिक्र ना करें, वो लोग कौन थे उसके बारे में तो अरमान जी पता लगा ही लेंगे। आप आइए हमारे साथ, हम चलते हैं, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। तब नानी माँ अविनाश और आस्था को देखकर बोली, तुम दोनों यहाँ बाहर रोड पर क्या कर रहे हो? तुम लोग तो उस मॉल में शॉपिंग कर रहे थे ना? तब आस्था ने अपनी आंखें गोल गोल मटकाते हुए कुछ सोचने के बाद बोली, वो नानी माँ, हम आपको ही ढूंढ रहे थे,